الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما
Recording
بعد،
in progress.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكل وعد الله الحسنى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم خلفائے راشدین کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد جو باقی عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، اور پچھلی کلاس کے اندر ہم نے ان کے متعلق پڑھ کے بات مکمل کری، جو حضرت جی کا انداز ہے کہ شعر کے اوپر مکمل کرتے ہیں، تو وہ اشعار بھی ہم نے پڑھ لیے تھے. تو اب جو ہیں اگلے عشرہ مبشرہ صحابی، ٹھیک ہے، اگلے اس ترتیب میں جو حضرت جی نے بھی رکھا، اور وہ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی ترتیب ہی کے مطابق ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے یہی ترتیب رکھی کہ ابو بکر فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و علی فی الجنہ، و طلحت فی الجنہ، و الزبیر فی الجنہ. تو طلحہ اور زبیر پڑھ چکے، اور پھر ان کے بعد فرمایا تھا وہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. تو عبد الرحمن ابن عوف کا تذکرہ آج ہم انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تھوڑا بہت تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسز کے اندر بھی آیا تھا. کسی کو یاد ہے کوئی ایسا واقعہ جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا آیا تھا جو ہم نے کافی پھر اس کے اوپر ڈسکشن کری تھی کلاس کے اندر؟ اتنا تو مجھے یاد ہے کہ ان کے گھر میں کری تھی، اس وجہ سے ان کو بھی شاید اسی وجہ سے یاد بھی ہو. جی اچھا، انہوں نے دانتوں سے کھینچ کر کے نکالا تھا، ہاں یہ بھی ایک واقعہ تھا. لیکن اور ایک اور جس میں تھوڑی سی جی ہم
ساری دکھائی ہے اور نے کہہ دیا تھا کہ تم جو انصاف کے وقت وہ تو اپنے سارے سارے کی جو خواہدہ میں کر دیتا ہم کیا ساری کر دیتا ہم کہ میں ایک اگر آپ کے لئے تو مجھے شاید
ان کی والی ان کے انصاری جو بھائی تھے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. اچھا اور کوئی؟
بیشن
اچھا ریشم، چلے بہت ساری ماشاء اللہ ظاہر ہے عشرہ مبشرہ صحابی ہیں تو ان کے بارے میں تو بہت ساری باتیں، لیکن سیرت کی کلاس کے اندر اچھا پتہ ہے مجھے خود بھی 100% شور نہیں ہے کہ واقعی وہ یہی والے تھے یا مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ ان کا تذکرہ تھا. مجھے جو یاد پڑا ہے آپ تو مجھے اصلاح کر سکتے ہیں کہ اس والے غزوہ میں، غزوہ موتہ جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، ان کے بعد علم جو ہے وہ ان کو ملا تھا، اور پھر ان کے بعد جو علم ملا تھا وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ملا تھا. اچھا چلیں وہ میں چیک کر کے انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر یاد رہا تو اس کے اوپر بات کریں گے. بہرحال تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھئی یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، نہیں نہیں وہ تو آخر میں ان کو ملا تھا نا، تو وہ تو شہید نہیں ہوتے، لیکن شہید ہونے والوں میں تیسرے جو تھے جو تھوڑا سا جھجکے تھے وہ یہی تھے کہ کوئی اور تھے؟ جی تو پھر ظاہر یہ نہیں ہوں گے. خیر چلیں، تو یہ خوش نصیب صحابی اگلے جو ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اچھا زمانہ جاہلیت میں ان کا نام جو تھا وہ عبد الکعبہ تھا، کعبہ کا بندہ، ٹھیک ہے، عجیب نام، کعبۃ اللہ کا بندہ، تو اللہ کا گھر ہی ہوتا ہے کعبہ، لیکن کعبۃ اللہ جو ہے وہ ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، تو جگہ کا بندہ تو یہ تو دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قدرتاً انکلز میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ناموں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو آمنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام، امن والی، امانت دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام آمنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دائیں تھیں ان کا نام کیا تھا، جن کے پاس جو ویٹ نرس تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 سال ان کے پاس گزرے تھے، حلیمہ، رائٹ، حلم والی، فور پیرنٹس والی. تو اللہ تعالیٰ نے نام بڑے بڑے سلیکٹ کر کے رکھے نا، नबी अलैहिस्सलाम अपना नाम सबसे बेहतरीन, मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, अहमद जो सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला हो, तो नेम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत रही है कि जब किसी का नाम मुशरिकाना बुरा कोई नाम होता था ना, तो उसको चेंज कर दिया करते थे। ठीक है, तो इनका नाम जो है वो अब्दुल काबा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम लाने के बाद जब ये इस्लाम लेकर आए तो इनका नाम अब्दुलरहमान रख दिया। ठीक है, अच्छा पैदा ये कब हुए? तो आपकी पैदाइश जो है वो आमुल फील के 10 साल के बाद हुई। आमुल फील क्या है? आमुल फील कौन बताएगा? इधर से बताएगा। आमुल फील का मतलब क्या होता है? क्या चीज है ये आमुल फील?
इस ये पे ये
कहाँ से? सीरिया का साइड? नहीं, सीरिया बिल्कुल उलट साइड, अब्रहा का लश्कर। ठीक है, सीरिया जो है वो शिमाल में था, ये लोग कहते थे शिमाल में है उस जमाने में, शिमाल इसी को कहते थे। ठीक है, और ये जो था बिल्कुल यमीन में था, यमन। तो यमन से वो लश्कर लेकर के आया था, 60,000 फौज लेकर के आया था। क्या करने के लिए? काबतुल्ला गिराने के लिए। अच्छा, 60,000 फौज लेकर आया था और 12 हाथी लेकर के आया, 10 हाथी लेकर के आया था। और वो भी कौन से? इंडियन हाथी नहीं, इंडियन एलिफेंट्स नहीं जो छोटे छोटे होते हैं, बल्कि अफ्रीकन एलिफेंट्स लेकर के आया था। ठीक है, क्या करने के लिए आया था? ये काबतुल्ला को गिराने के लिए आया था। ठीक है, तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बड़ी अजीब बात इसके ऊपर फरमाई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, कि अल्लाह ताला ने किया इसकी जो कैद थी, कैद किसको कहते हैं? मंसूबा, जो इसकी इसकी साजिश थी। ठीक है, जो इसकी प्लानिंग थी, जो छुपी हुई प्लानिंग होती है ना, उसको कैद कहते हैं। ठीक है, तो इसकी प्लानिंग को अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, उसको बिल्कुल मिटा के रख दिया। ठीक है, और उसको जो है वो भूसे की तरह से, अबे बील के जरिए से मरवा दिया। तो इसके ऊपर फिर बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि ये काबतुल्लाह को तो गिराने आया ही था, लेकिन काबतुल्लाह को गिराने के लिए तो बंदे भी गिरा सकते थे। ठीक है ना, उसको तो ऊंट भी गिरा सकते थे जो कि मक्का मुकरमा में पहले से मौजूद थे, 4 ऊंटों पर कब्जा कर लेता, राइट? और उसने कर भी लिया था हजरत अबू तालिब के ऊंटों के ऊपर कब्जा। ठीक है, तो ऊंटों के जरिए से काबतुल्लाह को गिरा सकता था। ये खाली काबतुल्लाह को गिराने के लिए नहीं आया था, बल्कि दरअसल इसका जो मंसूबा था, जो कि इसने लोगों को नहीं बताया था, जो कि इसने एक्सपोज नहीं किया था, ठीक है, जो कि छुपा हुआ इसका मंसूबा था, ऐलान इसने क्या किया? काबतुल्ला गिराने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मेरे जो है ना वो कैथीड्रल के अंदर लोगों ने गंदगी कर दी है, यहाँ के लोगों ने आकर के, मैं उसका बदला लेने के लिए आ रहा हूं। लेकिन असल में ये क्या करने के लिए आ रहा था? ये क्या करने आ रहा था?
ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तो ज्यादा वो आदि लेके आए जी नहीं देखी
और क्या करने आ रहा था? ऋषान भाई ने
सरीसा बना
कलीसा बनाने के लिए आ रहा था, यहाँ बनाने के लिए आ रहा था। बिल्कुल, अच्छा, यहाँ तो काबतुल्ला गिराने के लिए आ रहा था और पता करने के लिए आ रहा था और वो कब आया था यहाँ पर? मक्का मुकरमा कब आया था, किस डेट पर आया था? ठीक,
आपसे
वो आमुल फील में आया था। आमुल फील में दूसरा वाकया कौन सा हुआ था? एक तो हाथियों का लश्कर आया था, ठीक है, जिसको के अब्रहा, जिसको के अबाबील ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना, क्या क्या चीजें थी वो? छोटी 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 चिड़िया, इतने बड़े हाथियों को और इतने बड़े लश्कर को जो है वो बिल्कुल भूसा बना दिया। लेकिन इस साल में दूसरा बड़ा वाकया क्या हुआ था, जो कि इससे भी बड़ा वाकया और सबसे बड़ा वाकया था, सबसे बड़ा वाकया? ठीक है,
आप समझ
नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे आमुल फील। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल क्या है? आमुल फील। तो ये जो वाकया हुआ था ना, कुछ उलमा ने लिखा कि इसके बस 50 दिन के बाद नबी अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, दुनिया में तशरीफ ले आए। ठीक है, हाँ, जैसे उन्होंने भी लिखा प्रोफेसर असलम्स बर्थ। ठीक है, तो वो जो इसका छुपा हुआ मंसूबा था ना, जो इसने किसी को बताया नहीं था, वो ये था कि ये नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा को किसी तरीके से कत्ल कर दे। नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा जो है ना, उनको दुनिया से अगले जहान में पहुंचा दे, ताकि नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ ही नहीं सके। ठीक है, ये वो मंसूबा था जो उसने किसी को बताया नहीं था, ठीक है, अपने चंद करीबियों को बताया होगा, या अपने शयातीन से जो है उसने ये मंसूबा बना मिलकर बैठ के बनाया होगा, जो भी क्या होगा। तो ये जो है ना, ये शैतान जो है ना, ये शैतान बड़ा बुरे अंदाज में बात कर रहा हूँ, उसकी तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन शैतान बड़ा हिम्मत वाला है, बड़ा हिम्मत वाला है, ठीक है। और ये हिम्मत कैसी, मैंने बर्बादी की हिम्मत, अच्छी हिम्मत नहीं, बर्बादी की हिम्मत, ठीक है, बुराई की हिम्मत। इसको पता भी होता है ना कि ये नहीं कामयाब होगा, लेकिन ये फिर भी कोशिश करता है, ये फिर भी मेहनत करता है, ठीक है। इसको पता था कि इसने नबी अलैहिस्सलाम को रोकना नहीं है, ठीक है, लेकिन इसने जो है वो कोशिश करी और प्लानिंग करी, और अपने एक बहुत बड़े एजेंट जिसका नाम उस जमाने में अब्रहा था, आज उसका नाम पता नहीं कौन सा वाला है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा उससे छोटा है, कौन सा उससे छोटा है, ठीक है, आज भी बहुत सारे एजेंट मौजूद हैं इसके, लेकिन उस जमाने में ऐसा लगता है कि अब्रहा इसका सबसे बड़ा एजेंट था। उसको इसने इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने से रोक दिया जाए, ठीक है। तो हक का पैगाम किसी के रोके से कब रुका है जो अब रुकेगा, चिराग ईमा तो आंधियों में जला किया है, जला करेगा, ठीक है। तो अब काबतुल्ला जो है, ये बेशक अल्लाह का घर है, लेकिन काबतुल्ला से दावत तो नहीं होती ना, काबतुल्ला अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता है, काबतुल्ला की आवाज दीवारों से आवाजें आती हैं, अमर बिल मारूफ की, नहीं अनिल मुनकर की, शरीयत के उसूलों की, कुरान की आवाज आती है काबतुल्ला के अंदर से, अनलस के आप कोई टेप रिकॉर्डर चला दे, वरना काबतुल्ला में से कोई आवाज नहीं आती। तो हक का पैगाम कौन लेकर के आगे बढ़ता है, अल्लाह के नबी, अल्लाह के बंदे, ये लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो दीन को खत्म करने के लिए काबतुल्ला को नहीं गिराया जाता, ठीक है, दीन को खत्म करने का क्या तरीका होता है, काबतुल्ला को नहीं गिराया जाता, क्योंकि काबतुल्ला के गिराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जगह है, अगर बिल्डिंग नहीं भी रही फिर भी हम उधर ही सजदा करेंगे, वो तो जगह है, ठीक है। दीन को खत्म करने के लिए हमेशा दीन वालों पे हमला किया जाता है, वन वे और दी अदर, चाहे कभी इस तरीके से कत्ल करके हमला किया जाए, कभी दूसरे तरीके से गिरफ्तार करके हमला किया जाए, कभी तीसरे तरीके से उनको किसी और तरीके से चुप करवाया जाए, ठीक है, या किसी तरीके से उनको बदनाम करवा दिया जाए, राइट, उनको बदनाम करवा दिया जाए, या वन वे और दी अदर, बस इनको जो है ना वो चुप करवाना है, इनकी आवाज को रोकना। तो अब्रहा यही कोशिश करने के लिए आया था, बज़ाहिर हमें यही लगता है, काबतुल्लाह को भी साइड में गिराने के लिए, वो भी उसने करना ही था। बहरहाल तो इनका जो पैदाइश हुई थी, ये आमुल फील के फिर 10 साल बाद, यानी नबी अलैहिस्सलाम से ये 10 साल छोटे थे। कबूल इस्लाम के बारे में, कि इन्होंने भी इब्तदाई दौर में उस वक्त कबूल इस्लाम कर लिया था जब इवन नबी अलैहिस्सलाम ने दारे अरकम में जमा होकर के मुसलमानों को तालीम देना भी शुरू नहीं करी थी, यानी बिल्कुल शुरू के लोगों में थे। तो हजरत जी ने फिर लिखा कि साबिकून अव्वलून में से भी थे, 8 हजरात को साबिकून अव्वलून कहा जाता है, ठीक है, तो वो यही 8 हजरात होंगे, इनमें से हजरत खदीजतुल कुबरा भी उनमें होंगी, और ये जो चंद शुरू के साहब आए, तो इनका जो शुमार है वो उन 8 हजरात में से भी है कि जो के साबिकून अव्वलून थे, सबसे आगे, सब खतरे जाने वाले इस्लाम के अंदर, ठीक है। और ये उन 5 लोगों में से भी हैं कि जिन्होंने सिद्दीक अकबर रतान की दावत पर इस्लाम कबूल किया, ठीक है, सिद्दीक अकबर रतान के बारे में आप लोग सुन चुके हैं ना, कि जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया वो फौरन लोगों को बुलाने के लिए निकल खड़े हुए ना, तो तलहा रतान को भी लेकर के आए, जुबैर रतान भी, जुबैर रतान तो नहीं गालिबन उनमें से नहीं थे, लेकिन ये उनमें से थे, अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ातान भी, कि जिनको सिद्दीक अकबर रज़ातान जो है वो इस्लाम में लेकर के आए, ठीक है। तो ये उन 5 लोगों में से थे। फिर इनका शुमार उन 6 लोगों में से भी होता है कि जिनको के हजरत उमर रज़ातान की जब शहादत होने लगी थी, तो उमर रज़ातानों ने अगले खलीफा के लिए क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी, 6 लोगों की कमेटी बनाई थी, कि भाई ये 6 लोग जो है ना आपस में तय कर लें कि अगला खलीफा कौन होगा, ठीक है। तो उनमें से एक जो थे अली रतान थे, और उस्मान रतान थे, और तलहा रजरतान थे, और जुबैर रजरतान थे, और साद इब्ने वकास, अभी वकास रजरतान थे, और ये अब्दुलरहमान इब्ने औफ रजील थे, ठीक है। तो ही वॉज अमंग दोज 6 पीपल एज वेल, और बाकी हाँ, तो ये 5 में भी हो गए, 6 में भी हो गए, और 8 में भी हो गए, लिहाजा, और ये 10 में भी थे, यानी अशरम बशरा, जो 10 साहब अशरम बशरा है। अच्छा, इनका एक वाकया जो कि तरतीब में तो कुछ कुछ और वाकया है, लेकिन इस क्लास में एक और बात याद करना चाह रहा था जो कि बस थोड़ी देर पहले ही अल्लाह ने दिल में डाली, ठीक है, तो वो इसी क्लास में अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में अल्लाह बेहतर जानते हैं कि बेहतर है कि नहीं। तो वो वाला वाकया जो है ना वो हम आपको पहले सुना देते हैं कि हमने तलहा रज़ान के बारे में भी ये चीज़ पढ़ी, ज़ुबैर रज़ान के बारे में भी यही चीज़ पढ़ी, और अब्दुलरहमान इब्ने औफ रज़ान के बारे में भी यही चीज़ पढ़ी, ठीक है। तो उन दोनों के बारे में हमने कौन सी कॉमन चीज़ पढ़ी थी? जी, कि उनके पास बे इंतहा माल था, ठीक है, और खास तौर पर हजरत जी ने ना उनके इंतकाल के वक्त उनकी विरासत की तकसीम के बारे में बताया था कि उनकी एक बीवी को जो है वो इतने लाख जो है वो दिरहम मिले, और इतना जो है वो ऊंट मिले, और इतने जो है वो घोड़े मिले, ठीक है। क्यों बताया था इस तरीके से? क्योंकि जब मर्द का इंतकाल होता है तो उसकी विरासत उसके बेटों में, बेटियों में और बीवी में तकसीम होती है, और बीवी को कितना हिस्सा मिलता है? 1/8, ठीक है, यानी आठवां हिस्सा मिलता है, 1/8।
आठवां हिस्सा बीवियों के लिए होता है, तीन और चार
हाँ,
और
बीवियों के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब आठवां हिस्सा तो बहुत ही थोड़ा सा होगा ना, यानी अगर आप जो है वो एक इतना माल है, ठीक है, उस इतने माल को जो है वो आप आठ हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा तो इतना छोटा सा बनेगा ना, ठीक है। उस छोटे से हिस्से को फिर अगर बीवियां दो हैं तो दो में डिवाइड किया जाएगा, तीन है तो तीन में डिवाइड किया जाएगा, चार है तो चार में डिवाइड किया जाएगा। तो जब चार में छोटे से हिस्से को डिवाइड किया जाएगा तो वो और भी 1/4 रह जाएगा उसका। लेकिन इन सारे सहाबा का जो वो 1/4 ऑफ द 1/8 था वो इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि उनका होल कितना ज्यादा होगा, उनका फुल कितना ज्यादा होगा ना, जो वो छोड़ करके दुनिया से चले गए। तो इनके बारे में हजरत जी ने यही लिखा है कि इनका भी यही मामला था कि बहुत माल था इनके पास, इनके पास, लेकिन माल का वबाल नहीं था, राइट। क्योंकि माल जब होता है तो कम से कम वबाल क्या होता है उसका? वबाल का मतलब होता है कम से कम उसके साथ जो प्रॉब्लम आती है, कम से कम प्रॉब्लम उसकी क्या होती है? क्या बताया था भाई? ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हाँ, मरने का दिल नहीं चाहता, मौत से जो है ना वो दिल घबराता है, उसकी वजह क्या बताई थी? ये भी क्विज के अंदर थी। कुछ होते हैं ऑनलाइन क्विज और कुछ होते हैं ऑन साइट क्विज। जी रियान भाई, तो क्विज वैसे तो मोहब्बत हो जाती है उससे तो मरने का दिल नहीं चाहता, नहीं है तो बात नहीं बनी।
ख्वाहिशें पूरे करने का उन्हें पता होता है कि वो लोग अपने अगर वे अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, इसलिए
हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया मोहम्मद बिन आरिफ ने कि इस वजह से उनको मौत से डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने माल को, अपने पैसे को इस दुनिया के अंदर अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए खूब इस्तेमाल करते हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी सी जो है वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हजार जो भी उनका दिल चाहता है बस वो माल के जरिए से आ जाती है, क्योंकि हर चीज की प्राइस जो होती है पैसे में होती है ना, ठीक है। तो अब जब उनकी सारी ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी होनी शुरू हो जाती हैं तो अब वो कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो कब्र में जाकर के मैं ये सब ख्वाहिशात कैसे पूरी करूंगा, है ना। कब्र में तो कोई मुझसे पैसा लेकर के मुझे गाड़ी लाने से रहा, पैसा लेकर मुझे कोई घर देने से रहा, कोई पैसा लेकर के मुझे कोई और कुछ ख्वाहिश पूरी करने से रहा, कब्र में तो ये सब कुछ नहीं होना। अब वो डरना शुरू कर देता है कि कब्र में जाके तो सब खत्म हो जाएगा मेरा। तो ये माल का सबसे बड़ा, सबसे कम से कम वबाल होता है, और भी बहुत बड़े बड़े वबाल होते हैं, लोग दुश्मन बन जाते हैं, लोग हसद करने वाले बन जाते हैं, लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, लोग धोखा देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आपसे मोहब्बत करना खत्म कर देते हैं, आपके माल से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे वबाल होते हैं माल के, ठीक है। लेकिन कम से कम वबाल ये होता है कि मौत से डर लगना शुरू हो जाता है। तो इन सहाबा का मामला ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अपने माल को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते ही नहीं थे, ठीक है ना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे, जरूरियात पूरी करते थे, और जो है वो नेकियां कमाते थे आखिरत के लिए, ठीक है। तो इनका भी यही मामला था। तो इनका फिर माल का ये मामला था कि इनकी वफात के बाद उनकी विरासत के सोने को, यानी इनके पास जो सोना था इतना ज्यादा था कि वो बड़े बड़े ब्लॉक्स की फॉर्म में था, सोने की ईंटें, ठीक है। तो कहते हैं कि इनके जो सोने को लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ों से काट करके तोड़ा किया, ठीक है, कि भाई इतना सारा जैसे सोना है, तो अब इसका जो है ना वो 1/3 जो है वो फलाने को देना है, 1/4 इसको देना है, 1/2 इसको देना है, तो कैसे दें भाई? इतनी बड़ी ब्लॉक उठा करके अब क्या करें? तो वो तो टूट ही नहीं रही, उस जमाने में तो मशीनरी और ये सब तो कुल्हाड़े से तोड़ते थे, ठीक है, और जो तोड़ करके भी जाहिर है उसके टुकड़े भी होते होंगे, छोटे छोटे टुकड़े भी बन जाते हैं, फिर उन सबको इकट्ठा करके जो है ना वो तराजू में तोलते होंगे कि हाँ भाई कितने वजन का सोना इस बेटे को देना है, इतना वजन का सोना इस बेटी को देना है, इतने वजन का सोना बीवी को देना है, इतना वजन का, इस तरह से इनकी विरासत तकसीम हुई। ठीक है, तो हजरत जी ने भी यही लिखा कि एक मिनट, कि लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से अगर सोने को तोड़ने की जरूरत पेश आए तो सोचें कितना सोना होगा इनके पास। ठीक है जी, पिघला सकते हैं, इतना बड़ा फर्नेस तो मदीना मुनव्वरा में हमने नहीं सुना कि था उस जमाने में, जिसके अंदर के सोने को पिघलाएं फिर उसको कुंदन बनाए वगैरह वगैरह। उनकी कितनी बीवियां थी? हाँ, उनके इंतकाल के वक्त उनकी 4 बीवियां थी, ठीक है, तो चारों बीवियां उस वक्त हयात थी, उन सब के दरमियान इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, मरने के बाद ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जिसकी जो अपनी सारी ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी कर लेते हैं ना, तो उसकी ख्वाहिश फिर मरने के बाद पूरी नहीं होती, जो अल्लाह की ख्वाहिश पूरी करता है दुनिया के अंदर उसकी अल्लाह ताला मरने के बाद ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो उन्होंने सवाल किया था तो उसका ये जवाब दे दिया, तो अल्लाह की ख्वाहिश पूरी करने से फिर अल्लाह ताला इस दुनिया में हमें इत्मीनान दे देते हैं, ठीक है, इत्मीनान दे देते हैं, सुकून दे देते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि अब हमने अल्लाह की ख्वाहिश पूरी करी, खूब नमाजें पढ़ी, तो अब उसके बाद मैंने बैठ के खाजी यार मुझे एक आईलैंड चाहिए, अल्लाह ताला ये जो आईलैंड, या मुझे जो है वो रोल्स रॉयस की गाड़ी चाहिए, अल्लाह ये लो लो रोल्स रॉयस की गाड़ी, क्योंकि तुमने तहज्जुद पढ़ी थी, है ये लो रोल्स रॉयस की गाड़ी तुम्हारी ख्वाहिश में पूरी कर। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो मरने के बाद ख्वाहिशात पूरी होती हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला दिल का इत्मीनान दे देते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग दे देते हैं, इज्जत करने वाले लोग दे देते हैं, ये हो जाता है इस दुनिया के अंदर, रोल्स रॉयस और ये सब नहीं होता। ठीक है, तो वो आखिरत में मिल जाएगी जितनी आपको चाहिए, स्कूटी मिलेगी या या रोल्स रॉयस मिलेगी, वो डिपेंड करता है कि आपने अल्लाह को कितना खुश किया। अच्छा, तो इसमें जो है ना, जब हम ये पढ़ रहे थे ना, तो हमें एक बात याद आई कि चंद दिन पहले एक हमने हेडलाइन पढ़ी थी न्यूज की, ठीक है, वो हेडलाइन बड़ी अजीब सी थी, न्यूज तो बहुत थोड़ी सी पढ़ी लेकिन फिर उसको बंद कर दिया था, फिर मैंने सोचा कि यार उसको जरा सा हम अपने नौजवानों के सामने थोड़ा सा बयान कर देते हैं इसी क्लास के अंदर। वो अजीब न्यूज थी, तो उसका टाइटल ये था कि एक मिनट, अच्छा ये क्लास जो है ना किसके लिए शुरू की गई थी जी? हाँ, अब्दुल्ला मोतन भाई के लिए, जो यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। ठीक है, तो उस वक्त अब्दुल्ला मोतन भाई की एज कितनी थी आपको याद है? 16 साल, ठीक है, मेरा भी ये ख्याल था कि इनकी एज उस वक्त 16 साल थी। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि ये क्लास जो है ना वो 16 साल वालों के लिए शुरू की गई थी, ठीक है, और 16 से आगे पीछे आप थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर लें तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो अब जो ये छोटे 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 सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो ये तो इसलिए बैठे हुए हैं कि इनकी अम्मा इनको कहती हैं यार जाओ जाकर बैठ जाओ क्लास के अंदर, ठीक है, तो क्या मेरे बच्चे को इजाजत है? भेज दें, उसको भी भेज दें, इसको भी भेज दें, उसको भी भेज दें, सारे छोटे निके 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 आकर के माशाल्लाह इधर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये माशाल्लाह ज्यादातर अपने कामों में लगे रहते हैं, ठीक है, अपनी बातों में लगे रहते हैं, तो अगर हम इनकी फिक्र करने लगे तो फिर हम तो अपनी क्लास नहीं कर सकते कि इनको हर बात समझ में आ जाए, ठीक है, वरना तो फिर वो जो उन्होंने गजल सुनाई हो तो हमारे समझ में मुश्किल से आ रही थी, ठीक है, इनको क्या समझ में आएगी। तो इस वजह से हम तो टारगेट रखते हैं 13 अराउंड, चलो 12 भी माशाल्लाह कह सकते हैं, 12 एंड अबव बच्चों के लिए, ठीक है, और बच्चियों के लिए, तो इस वजह से अब वो उम्मीद है कि समझ लेंगे इस बात को। तो हमने जो न्यूज पढ़ी थी ना अजीब, कि देखें सहाबा का क्या मामला था, कि इनको अल्लाह ताला ने इतना माल दिया, शुरू में इन सबके पास माल नहीं था, पैदाइशी तौर पर सारे अमीर नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इनकी दीन की खिदमतों की वजह से, इबादतों की वजह से, मुजाहिदों की वजह से, सच्चाई की वजह से इनको इतना माल दिया कि आज के मिलियनर्स एंड बिलियनर्स जो है वो उसका मुकाबला करें या नहीं कर सकते, ठीक है, कैलकुलेशन करके भी हमारे भाइयों ने बता दी थी, ठीक है, लेकिन जो माल के पीछे भागने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, उनके साथ देखें अल्लाह ताला क्या करता है। एक तो बड़ा आसान सा एक एक उसकी वो भी है, सिमिलिट्यूड भी, बात समझाने के लिए, कि जो दुनिया का मालो दौलत होता है ना, दुनिया के मालो दौलत वो होता है इंसान के शेडो की तरह, साए की तरह, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप ही में से कोई बताएं, साई का मतलब क्या है? भी माल दौड़ा साई की तरह होता है, और कोई जो माशाल्लाह मुस्तकिल जवाब दिए जा रहे हैं उनके अलावा कोई? माल साई की तरह होता है का मतलब क्या? तो नहीं जान रहे आप
उसके पीछे डॉक्टर लौटता रहता मगर कभी आएगा नहीं।
साया जो होता है ना वो क्यों बनता है? क्योंकि आपका जो लाइट सोर्स होती है ना वो पीछे की तरफ होती है, या जिस तरफ भी लाइट सोर्स होती है जहां से कि लाइट पड़ रही है आपके ऊपर, तो उसके अगेंस्ट ही साया बनेगा ना। ठीक है, अगर सूरज आपके पीछे है तो साया आपके आगे बनेगा। अगर ये जो ट्यूबलाइट लगी हुई है कमरे में, ये अगर आपके आगे है तो साया मेरा किधर है? मेरे आगे नहीं, साया तो मेरे पीछे है। ठीक है, अब जब मैं उस साये को पकड़ने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? कभी साया मेरे हाथ में आ सकता है? साया कभी भी मेरे हाथ में नहीं आएगा, बस हर वक्त मैं भागता रहूंगा साये के पीछे, साये के पीछे, साये के पीछे, साया मेरे हाथ में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो माल की मामला ऐसे ही होता है जी, गिर जाए तो साया खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद साया बाकी नहीं बचेगा उसके बाद। ठीक है, तो गोया के माल खत्म हो जाएगा अगर उसके ऊपर गिर जाएगा ना, तो ये बस गया फिर उसके बाद। अच्छा, तो अब यह है ना, जो माल के पीछे भागने वाले क्या क्या करता है कि एक तो उनके हाथ कभी ये आता नहीं है, ठीक है, जिससे कि ये मुतमईन हो सकें, खुश हो सकें और सुकून पा सकें। तो इस वक्त दुनिया के अंदर एक अजीब नई बीमारी डायग्नोस हुई है, ठीक है, खुसूसन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। उसका नाम इन्होंने रखा है पिनाया फोबिया या पिनी फोबिया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, PENIA फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? खौफ। ठीक है, तो कहते हैं कि वाई पिनाया फोबिया या पिनी फोबिया इज एक्सप्लोरिंग अमंग यंग पीपल एंड व्हाट इट मींस। ये एक्सप्लोर्ड हो रहा है मगरिब में रहने वाले नौजवान बच्चों बच्चियों के अंदर। व्हाट इज पिनाया फोबिया? फेयर ऑफ पॉवर्टी, गरीब हो जाने का खौफ। ठीक है, गरीब हो जाएंगे हम फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो अब ये अजीब मर्ज है। अच्छा, कहती हैं कि ये जिसने इसको लिखा है तो उसने लिखा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भाई कमाना चाहिए, कमाना हमारी जिम्मेदारी है, तो कमाने के लिए जो इल्म हासिल करना चाहिए। नहीं, इट्स नॉट दैट, कि एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग होती है कि भाई हाँ, एक हेल्दी कंसर्न होता है कि हाँ भाई कमाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, लड़कों की खुसूसा मर्दों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये एक डीप सीटेड ड्रेड बन गया है, ड्रेडफुल, ठीक है, खौफ बन गई है ये चीज, और बाकायदा ये साइकोलॉजिकल स्टेट बन गई है उन बच्चों की, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, और उनको खौफ ये लग गया है कि हम गरीब हो जाएंगे फिर क्या हो, फिर क्या करेंगे हम। ठीक है, तो उसकी फिर उसने बहुत सारी रीजंस लिखी जो उन्होंने स्टडी करते हैं, तो रीजन लिखी, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको पता चले। खाली ये नहीं कि अब्दुलरहमान इब्ने औफ इतने अमीर थे और जुबैर रतन इतने अमीर थे और तलहा रतन इतने अमीर थे, इट्स नॉट, ये सब क्या है, ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। ठीक है, कि सहाबा अमीर थे, ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है, यू हैव टू नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी टू। ठीक है, कि देखो जो अल्लाह को मानते और नबी अलैहिस्सलाम की मानते हैं तो उनके साथ अल्लाह कैसा करता है, और जो इनका इनकार करते हैं तो अल्लाह ताला उनके साथ कैसा करता है, ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है, ताकि ताकि क्या हो, ताकि क्या हो कुरान की जुबान में,
हाँ
दोनों साइड ऑफ द स्टोरी मालूम होनी क्यों जरूरी है, ताकि क्या हो हमारे अंदर। कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है, जो कि हम आपसे चंद दिनों पहले डिस्कस कर चुके हैं कई दफा। हम आपसे वो जो बात कर चुके होते हैं उसी के बारे में पूछते हैं, ताकि वो हो जो सहाबा के साथ हुआ हुआ था, वहब्बबा इलैकुमुल ईमाना وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ। ठीक है, ताकि ईमान, नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद, ये आपकी निगाहों में बहुत अच्छी चीज बन जाए, खूबसूरत चीज बन जाए, ठीक है, और कुफ्र से आपके दिल में नफरत पैदा हो जाए। कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल्फुसूक वल्इसयान। ठीक है, जब तक कुफर की गंदगी आपको सामने नजर नहीं आएगी, जब तक इसयान की जो भयानक तस्वीर है, राइट, जो बहुत बुरी खौफनाक तस्वीर है, वो जब तक आपको नजर नहीं आएगी ना, आपको कुफर से नफरत पैदा नहीं हो सकती। हवाई बातों से खाली नफरत पैदा नहीं होती, यू नीड टू नो, आपको मालूम होने की जरूरत है, तब नफरत पैदा होगी, वैसे नफरत पैदा नहीं होती। इस वजह से वेस्टर्न मुआशरे की जो ये बुराइयां हैं ना, तो इनको मालूम होना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें लिखा कि ये वजूहात क्या हैं कि जी बस वो यही सोचते रहते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट कि जी ये जो है ना, ये दुनिया के अंदर जो है वो इतने रिसेशंस हो रहे हैं, इकोनॉमीज जो है वो खराब हो रही हैं, और जो है वो इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है ना, अब सारी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पाकिस्तान को तो रहने दें, सऊदी अरब के अंदर आकर के देखें कि जो चीज आपको जो है ना, वो अगर 2 रियाल की मिलती थी, वो अब वो 10 रियाल की मिल रही है, ठीक है ना, और जो 10 रियाल की मिलती थी वो अब 25 रियाल की मिल रही है, और जो है 1,000 रियाल का मिलता था अब जो है वो 5,000 रियाल का मिल रहा है। इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब स्कूल का बच्चा और बच्ची जो है वो सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी है तो अब मैं कैसे खरीदूंगी चीजों को, मैं कैसे खरीदूंगा चीजों को, सोच रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। और क्या सोच रहे हैं, शैतान उनके दिल में ये वसवसे डाल रहा होता है। फिर उसके बाद एक और बड़ी रीजन इसने लिखी कि द बर्डन ऑफ स्टूडेंट डेट। स्टूडेंट डेट ये क्या चीज होती है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता ही नहीं है कि यह चीज होती है। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमें जो है ना, हमारे बच्चों को जो है वो स्कूल में पढ़ने के लिए और कॉलेज में पढ़ने के लिए कर्जा नहीं लेना पड़ता, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जाते हैं बगैर कर्जे के, पूरा यूनिवर्सिटी पढ़ करके बाहर निकल आते हैं। अमरीका में ऐसा नहीं होता, अमरीका में यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इतनी महंगी है, इतनी महंगी है कि या तो आप हो मिलियनियर तब आप उसकी फीस पे कर सकते हैं, वरना आपको लोन लेना जरूरी है। लोन लिए बगैर आप ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना आप कुछ और चीज बन सकते हैं, कोई अच्छी चीज आप नहीं बन सकते। तो वो लोन जो लेते हैं ना ताकि हम यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकें, वो इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि फिर जब ये ग्रेजुएट होकर के फिर जॉब मार्केट में आते हैं ना, तो कई साल तो ये अपनी तनख्वाह से जो है वो लोन उतारते रहते हैं, लोन उतारते रहते हैं, और कई साल के बाद जाकर के जब इनका लोन उतरता है तो उसके बाद फिर जो है ना वो सारी तनख्वाह घर लेकर के आते हैं, वरना नहीं है इनकी तनख्वाह घर पे आती, ठीक है। तो ये तालीम का जेवर जो है ना, जिसका ये इतना शोर मचाते हैं, हमारे ऊपर थोसते हैं, ये तालीम का जेवर इनके यहाँ अगर इसको अच्छा समझ भी लिया जाए तो ऐसे मिलता है, ये तालीम का जेवर ऐसे नहीं मिल जाता। तो स्टूडेंट डेट इनके ऊपर इतना होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, कि इसी तकलीफ में हर वक्त रहते हैं कि मैं उतारूंगा कैसे इस डेट को, ठीक है। फिर उसके बाद एक तीसरा मसला जो कि हम पर भी अप्लाई होता है, बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। स्टूडेंट डेट तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया में अभी तक इतना नहीं कोई शुरू हुआ, ठीक है, तो हमारे लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनके मुआशरे का पता तो होना चाहिए ना कि कितना बुरा मामला है उन लोगों का, ठीक है। लेकिन एक मसला जो कि हम पर भी बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, वो क्या, सोशल मीडिया एंड द कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया के ऊपर जा करके फेसबुक पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो और दूसरे सोशल मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, और उसमें देख रहे हैं कि फलाने ने जो है वो अपना अपनी जिंदगी की तस्वीरें उठा करके डाली हुई हैं, ओ मैं इतना कामयाब हो गया, मुझे जो है वो ये तमगा मिल गया, मुझे ये मुकाम मिल गया, ठीक है ना, अपने सक्सेस स्टोरीज जो हैं उनकी स्टोरियां डाली हुई होती हैं अपने फेसबुक के ऊपर, उनमें से बहुत सारी चीजें झूठी भी होती हैं, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं ना वो ऐसी होती हैं कि सच्ची होती हैं, लेकिन उनका जो अच्छा पार्ट होता है वो दिखा रहे होते हैं, और जो उसका बुरा पार्ट होता है ना वो छुपा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो लोग सोशल मीडिया पे जाकर के कभी किसी के फेसबुक पेज को देख रहे हैं, कभी किसी के फेसबुक को पेज को देख रहे हैं, कभी किसी की जो है वो तस्वीरें देख रहे हैं, कभी किसी का टिकटॉक जो है वो वीडियो देख रहे हैं, कभी किसी की यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो वो यही देख, यार वो इतना कामयाब हो गया, वो उधर पहुंच गया, उसको इतनी जो है वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल मिल गया, उसने इतनी अच्छी गाड़ी खरीद ली, उसने इतना अच्छा घर बना लिया, मैं कब बनाऊंगा ये सब कुछ, मैं कैसे बनाऊंगा ये सब कुछ, मेरे पास ये सब कुछ कब आएगा, और अगर नहीं आ सका तो फिर मैं क्या करूंगा। तो ये खौफ जो है ना फिर शैतान उनके दिलों के अंदर डालता है और बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो इसको जो है ना, इसने बहुत सारी और रीजंस भी लिखी हैं, वो सब तो हम अभी नहीं पढ़ सकते, लेकिन आखिर में जो इसकी समरी लिखी ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि हमारे लिए फायदेमंद है कि ये खातून लिखती हैं जिन्होंने ये न्यूज बनाई कि द राइज ऑफ फिनियाफोबिया अमंग यंग पीपल इज ए कॉम्प्लेक्स इशू विद डीप रूट्स इन इकोनॉमी, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, बहुत बड़ा मसला है ये। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बच्चों से कह दें डोंट वरी। तुमने लिखा है कि एड्रेसिंग इट रिक्वायर्स मोर देन जस्ट टेलिंग यंग पीपल टू वरी लेस। हम कहते हैं ना भाई फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, वरी लेस, डोंट वरी, ठीक है ना। अब वो क्या वरी नहीं कर रहे, चलो जाकर इलाज, चलो ड्रिंकिंग करने चलते हैं, उनके यहाँ तो यही होता है शराब पीने चलते हैं, चलो ठीक है। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना लगे दम मिटे गम कोई तुम नशा कर लो सारा तुम्हारा गम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शराब का नशा कर लो, और कौन कौन से नशे होते हैं भाई शराब का नशा तो एक नशा होता
अच्छा
है, मालो दौलत का नशा होता है, और फोन का नशा होता है। हाँ फोन का भी बड़ा खतरनाक नशा, सबसे खतरनाक बोल के सिगरेट का भी नशा होता है, और जो है वो खेल का भी नशा होता है, ठीक है। ये जो कमर्शियल स्पोर्ट्स बन जाते हैं ना तो फिर वो नशा बन जाते हैं, वरना फुटबॉल अगर ऐसे ही खेल लें तो वो तो एक्सरसाइज बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको फिर रोनाल्डो तक ले जाएं तो फिर वो नशा बन जाता है, ठीक है। उससे नीचे नीचे तक वो एक्सरसाइज बनती है, उसके ऊपर वो नशा बन जाता है। तो ये नशे जो होते हैं ना इनके जरिए से मसले हल नहीं हो जाते, ठीक है। तो उसने ये लिखा है कि भाई ये वरी लेस कह देने से मसला हल नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारा दीन हमें इससे निकलने का बेहतरीन तरीका बताता है, ठीक है। एक तो है अल्लाह का जिक्र करना, ठीक है ना, एक तो है अल्लाह का जिक्र करना, यानी मुराकबे करते रहो सारे मसले खत्म हो जाएंगे, नहीं ये नहीं है, ठीक है। मुराकबा इज जस्ट वन थिंग, लेकिन अल्लाह ताला इसका क्या हल बताते हैं, अल्लाह ताला बताते हैं कुरान मजीद के अंदर वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, ठीक है। कसम है असर की, जमाने की, कि सारे के सारे इंसान जो है ना वो लॉस्ट है, वो बर्बाद है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो नबी अलैहिस्सलाम की बात पर ईमान लेकर के आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, और नेकी के काम करते हैं, चाहे वो जिक्र हो, चाहे नमाजें हो, चाहे और नेकी के काम हो। वतवासव बिल हक्की वतवासव बिस सब्र, ठीक है। और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करते रहते हैं और एक दूसरे को सबर की नसीहत करते रहते हैं। क्या बताती है ये आयत हमें, ये जो सूरत है छोटी सी सूरत सबको याद होगी इंशाल्लाह, ये सूरत हमें क्या बता रही है, वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस सबर। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि भाई तुम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात में अगर आ जाओगे तो तुम खसारे से बाहर निकलोगे, नहीं, दैट इज नॉट इनफ। दो चीजें काफी नहीं है, बल्कि दो और चीजें भी जरूरी हैं कि एक दूसरे के साथ मिल करके रहो, ताकि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल सूरत हाल आती रहे तो दूसरे तुम्हें नसीहत करने वाले मौजूद हो, तुम्हें बताने वाले मौजूद हो, याद कराने वाले मौजूद हो कि हक यही है, इसके ऊपर डटे रहिए। वतवासौ बिस्सब्र, कि जब हक पे डटने की वजह से अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ भी जाए ना, वो सबर की भी नसीहत करते रहे, सबर की भी नसीहत करते रहे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम मिलजुल करके रहते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की बात मानते हैं, नेक अमाल करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, तब हम इन खौफों से बच करके रहते, और सहाबा कराम एग्जैक्टली ऐसे ही रहते थे, ठीक है ना। अलोन नहीं रहते थे कि बस मैं तो अकेला हूं और मैं बस अल्लाह की इबादतें करता रहूंगा, जिक्र करता रहूंगा, सारे मसले हल हो जाएंगे, कोई मसला मेरे पास नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता था। बल्कि वो एक जमात की शक्ल में रहते थे, एक माहौल की शक्ल में रहते थे और नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिल करके रहते थे। नबी अलैहिस्सलाम चले गए तो नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो आने वाले खुलफा थे उनके साथ रहते थे, ठीक है। तो चूंकि काफिर जो होता है वो इन बातों को मानते ही नहीं, वो तो ईमान ही को इनकार कर देता है, तो फिर उसके पास ये सब नहीं होता। अब इन लोगों को भाई ये डॉक्टर लोग जो है वो बने चले जा रहे हैं कि हाँ भाई डोंट वरी, और इसका हम ये हल निकालें, इसका ये हल निकालें, लेकिन इनके यहाँ मामला यही होता है कि मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, ठीक है। जितना ये दवाइयाँ पिलाते हैं ना लोगों को, एंटी डिप्रेसेंट्स या जो है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इनके मुआशरे के अंदर मर्ज कम नहीं होता बल्कि बढ़ते ही रहते हैं। अल्लाह ताला हम सब की इसे हिफाजत फरमाए और हमें नबी अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा और सहाबा कराम को अपना रहनुमा बना करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माजत, आपने बहुत देर रोक के रख लिया। अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने नाम लिख दिए, अब्दुल्ला बिन रवाह रजान, जैद बिन हारिसा पहले शहीद हुए थे, फिर जाफर तैयार रजान हुए थे, फिर अब्दुल्ला बिन रवाह रजान शहीद हुए थे। वो इनका अब्दुलरहमान बिन औफ नहीं थे वो।